ओम शांति। आज का टॉपिक है दुआएं दो और दुआएं लो। हम सभी को पता है कि दुआएं देना है और दुआएं लेना है, क्योंकि बाबा के जब बने तो हमारा लक्ष्य है कि बाप समान सर्वगुण संपन्न, मतलब कि बाबा हमें जो लक्ष्य दिया है लक्ष्मी नारायण बनने का, तो लक्ष्य कितना ऊंचा है। और बाबा की भावना भी है कि मेरा हर बच्चा लक्ष्मी नारायण बन जाए। लेकिन बाबा कई बार हंसी में कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं, लेकिन बाबा मुस्कुराता भी है। क्योंकि कई बार बाबा ने कहा कि सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो गद्दी पर एक के सिर पे एक बैठेंगे क्या। लेकिन फिर भी वो उम्मीदें छोड़ता नहीं है, फिर भी हमको इतने सालों से पढ़ाता रहता है। कई बार कहते हैं कि कोई कोई ऐसा लगता है कि ये मुरली हमें कितनी बार रिपीट की है, तो बाबा कहते हैं नए नए जो आते हैं, और दूसरा कि हमने जो धारण नहीं किया है तो बाबा को बार बार बताना भी पड़ता है। तो इतनी शुभ भावनाएं बाबा की हमारे प्रति, इतनी दुआएं हैं, आशीर्वाद है, सब कुछ है। तो आज हम देखेंगे कि दुआएं क्या है। कहते हैं कि दुआएं जहां दवाई काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती है। कोई बीमार पड़ता है तो कहते हैं ना, योग करो, योग का दान दो। और कहते हैं कि दवाइयाँ भी सब पूरी हो गई है तो दुआएं काम आती है। जब भी कोई ऐसा प्रसंग होता है, एक्सीडेंट किसी का होता है, तो आपने देखा होगा कि ऐसी परिस्थिति होती है उसमें एक दो बच जाते हैं, और बाकी इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद भी ऐसा होता है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में हो सकता है कि बहुत दुआएं ली हो। तो दुआ एक खजाना है, जैसे ज्ञान खजाना है वैसे दुआएं भी खजाना है, और पावरफुल खजाना है। तो दुआएं का मुख्य क्या है कि शुभ भावना और शुभकामना, बाबा के हरे के प्रति हमारी शुभ भावना और शुभकामना होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन हमने कितने जन्म लिए हैं, इतने जन्मों में हमारे हिसाब किताब भी होंगे। इसको बाबा कहते हैं कि योग बल से हिसाब किताब को कम भी करना है और जमा भी करना है। तो हमें पता है कि इतने जन्मों में हमें प्लस भी किया है, माइनस भी किया है, वो सारे हमारे सामने तो आएंगे ही। तो बाबा कहते हैं कि सब कुछ भूल करके हमारी एक भावना ही हो, निस्वार्थ भावना से हम शुभ भावना देते हैं तो ये दुआ का काम करता है। दूसरा है कि दुआएं कौन दे सकता है। बाबा ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की है, कौन दे सकता है दुआएं, कौन दे सकता है? क्योंकि हम सबको बाबा बार बार कहता है दुआएं देना है, दुआएं लेना है, किसी को दुख नहीं देना है, तो कौन दे सकता है? कौन सा स्टॉक? दुआओं का। तो सबसे पहला है कि हम अगर किसी के साथ हमारा अनबनाव हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, कुछ भी होता है, उसको हम जल्दी से दुआ नहीं दे सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर, भले हम ऊपर से बाबा ने कहा है कि आपको ये करना है, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अंदर बैठ जाता है, होता है ना, होता है। तो एक तो मिलनसार स्वभाव होता है कि भाई चलो सब कुछ हो गया, लेकिन भूल जाते हैं और मिलनसार हो जाते हैं। फिर निर्माणता चाहिए, क्योंकि निर्माणता जब तक नहीं है तब तक हम झुक नहीं सकते हैं। और बाबा कहते हैं कि अगर झुकेंगे नहीं तो अकड़ रहेंगे, तो क्या होगा, हम टूट जाएंगे। इसलिए निर्माणता चाहिए, दूसरा मिलनसार चाहिए, और सेवा जब करते हैं तभी ये बहुत जरूरी होता है। यूनिटी में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ काम करना पड़ता है, किसी का कैसा स्वभाव, किसी का कैसा होता है, सब यूनिटी में हमको मिलनसार होकर के रहना पड़ता है। तो एक निर्माणता चाहिए, दूसरा है दिल साफ। अब दादी जी की बात याद आती है, प्रकाशमणि दादी जी की, तो हम गलतियां भी करते थे तो दादी को कंप्लेन आती थी तो दादी कभी कभी बोला लेती थी कि क्या हुआ, तो दादी को हम बताते थे, दादी ये किसी को बताना नहीं, तो दादी हंसती थी। लेकिन हमने ऐसी बातें जब की तो हमने देखा अंत तक दादी ने वो बात नहीं की थी। तो कहने का मतलब कि इतना सारे जो बाबा के बच्चे हैं, यहाँ के नहीं बाहर के भी, तो दादी एक एक्सम्बल थी कि उनके मन में कुछ रहता नहीं था। कभी कभी कोई कुछ करता है तो बहुत हमारे मन में रहता है कि इसने ये किया ही किया, लेकिन दादी को इतने सारे के साथ रहते थे, तो सारे मधुबन निवासी उसको माता जी कहते थे प्यार से। माता जी ने जो काम दिया है ना वो तो करना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड था। तो मतलब कि दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कारों का मतलब कि अभिमान अपमान की महसूसता का दाग ना हो। और दूसरा है कि जितनी हमें प्राप्ति बाबा का ज्ञान से हमको प्राप्तियां होती है, शक्तियों की प्राप्ति होती है, तो सर्व प्राप्ति स्वरूप जब बन जाएंगे तो भी हमें दुआएं दे सकते हैं। दूसरा है कि जब बाबा को हम बहुत याद करेंगे, दिलाराम को बाबा ने कहा कि सब संबंध जो है, कितने सारे संबंध है, बाबा को हर संबंध से याद करना है। लेकिन बाबा ने कल कहा कि आपको जो प्यारा संबंध है उसको याद करोगे तो वो प्रीति की रीति निभाएगा। तो कितना अच्छा बताया था कि किसी को माँ का प्यार याद आता है, किसी को भाई का प्यार आता है, किसी को सखा का, किसी को सखी का, किसी को मित्र का। तो बाबा कहते जो आपको बहुत प्यारा है उस संबंध में मुझे बांध दो तो मैं उस प्रीति की रीति निभाऊंगा। तो जब वो हम बाबा को उस संबंध से प्यार करेंगे तो दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए होंगे। तो जब बाबा ही हमारी आंखों में हमारे दिल में होंगे तो और तो कुछ होगा नहीं, तो हम सहजता से दुआओं का काम कर सकेंगे। फिर हमारी जब दुआओं का खजाना हमारे पास होता है या दुआओं हम अमृत वेले सोचते कि आज हमको है ना कुछ भी हो जाए लेकिन हम किसी के प्रति हमारी भावना खराब ना हो जाए, हम डिस्टर्बेंस ना हो जाए या किसी को डिस्टर्ब भी ना करे, अगर हम ऐसा अमृत वेले संकल्प लेते हैं तो मनसा मतलब कि थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो कोई विघ्न आता है तो शस्त्र हमारे सामने तैयार है कि हमको क्या करना है, तो इससे क्या होता है कि हम बच जाते हैं। दिल से किसी को वेलकम करते हैं, दिल से कोई हमारे पास आता है लेकिन कई बार हम रिजेक्ट करते हैं, बहुत बिजी है, ऐसा है वैसा है, तो अंदर से बाहर से बोलते हैं हाँ हाँ बैठिए बैठिए, लेकिन अंदर से होता है कि जल्दी जाए। तो क्या होता है, दिल से अब किसी को हम वेलकम करते हैं और जो सेवा हमको मिलती है वो दिल से और मोहब्बत से करते हैं तो जो दुआओं का दरवाजा खुल जाता है। फिर मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चलन और चेहरा, क्योंकि अभी आजकल है ना लोगों को प्रूफ चाहिए, हम कितना भी ज्ञान सुनाते हैं, आज तो आपने देखा होगा कि अभी व्हाट्सएप जब से आया है तब से लोग अपने अपने एक चैनल खोल के बैठा है। अब इतना सारा आता है ज्ञान की इतना 24 घंटा भी कम पड़े इतना ज्ञान आता है, तो ज्ञान का सागर तो सब है, लेकिन बाबा कहते प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में हम अगर एक बाबा की एक महावाक्य जो है उसको भी प्रैक्टिकल में लाते हैं तो बाबा की दुआएं मिलती है। फिर अगर हमको किसी के प्रति, बाबा ने एक बार कहा था कि अगर आपको किसी के प्रति थोड़ी सी भी नफरत होंगी आप संपूर्ण बन ही नहीं सकते हैं और दुआएं भी नहीं दे सकते हैं। तो किसी के प्रति अगर थोड़ी सी घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है या बदला लेने की भावना है लेकिन ऊपर से बहुत मीठा मीठा बोलते हैं तो वो काम नहीं करेगा। फिर बाबा ने हमको बहुत स्वमान की लिस्ट दी है, उसमें से कोई स्वमान को हम जब सारे दिन भले स्वमान बहुत की जरूरत नहीं लेकिन एक ही स्वमान में हम स्थित रहते सारे दिन तो भी ऊंची स्टेज हमारी होती है और उससे हम दुआएं दे सकते हैं। फिर जब संतुष्ट होते हैं और रहमदिल, बाबा का एक बहुत बड़ा गुण है कि रहमदिल है बाबा सबके प्रति, कुछ कोई भी हो उसके प्रति, तो बाबा के बच्चे हम भी हैं तो बाबा कहते हैं मेरे समान बनो, तो हम भी कैसे बने। अगर जो भी आए हैं उसको हम संतुष्ट करने की हमारी भावना होंगी और हम रहमदिल होंगे तो दुआएं दे सकते हैं। फिर अपनेपन की भावना, क्योंकि मधुबन में लोग कहते हैं हमको यहाँ अपनेपन की भावना बहुत मिलती है, अपने घर जैसा लगता है। और यहाँ तो आप देखते होंगे कि जहाँ भी जाएंगे तो आपको एक महसूसता आएगी, अपना घर की महसूसता आती है, अपनेपन की महसूसता आती है। दूसरा है कि ये सारा विश्व जो है हमारा परिवार है। बाबा ने कहा ना कि बेहद का परिवार, जब ये बाबा से जुड़े तो इतना नेशनल इंटरनेशनल लोगों से मिलना होता है। और मधुबन में आप देखते होंगे कि सीजन जब चलती है तो इतने सारे लोग यहाँ आते हैं, सारे देश के लोग, और सबसे मिलना होता है, चाहे हमें उसकी भाषा आती है नहीं आती, लेकिन ओम शांति जरूर करते हैं। तो जैसे हमारा एक मतलब विश्व एक कुटुंब है, कोई भी सेंटर पर जाते हैं सफ़ेद कपड़े पहना हुआ है, और रास्ते में भी जाते हैं ना अनजान जगह पे, तो भी खुश हो जाते हैं हमारा एक भाई है यहाँ, हमारी एक बहन है। तो मतलब कि भावना होनी चाहिए हमारी। और दूसरी, बाबा हमको रोज रोज कहते हैं कि आप आत्मा का पाठ पक्का करो। जब ये भट्टी बनी थी शुरुआत में तो 14 साल तक एक ही पाठ चला था। तो हमने एक बार दादी गुलझार जी को पूछा कि एक ही पाठ में आप क्या करते थे। आज उसी समय भी उनका पाठ इतना पक्का था कि आज सबको, हम है ना दादी के पास जाते थे ना गुड नाइट करने, तो बहुत उलट पुलट बातें भी करते थे, क्योंकि दादी से हमारी थोड़ी थोड़ी लोगों की बहुत जाते थे ना, तो थोड़ा नजदीक आ गए थे, तो हम सबकी बात भी करते थे हल्का होने के लिए। और फिर दादी हैं सब कुछ सुनती थी, ऊपर रहती थी वो तो। लेकिन उसके बाद दादी कहती थी कि अभी वरदान याद है, स्लोगन याद है, ऐसा बोलती थी। तो बहुत कुछ सुनती, ऐसा नहीं है कि वो जो निग्लेक्ट करती, आप लोग क्या है कीचड़ा कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलती थी। लेकिन स्नेह सहयोग से साथ बिठाती थी और चिटचट करते थे। उसके बाद दादी हमको ऐसा बताती थी। तो मतलब कि सबके प्रति आत्मिक दृष्टि और आत्मिक भावना, क्योंकि हम सभी एक ही घर से आए हैं, और यहाँ आने के बाद इतने सारे जगह पे हम, आपको पता नहीं किसी की शादी होती है ना तो कुंडली मिलाते हैं, लेकिन यहाँ 84 जन्म कहाँ कहाँ घूमे हैं, कहाँ कहाँ हम रहे होंगे, हमारा बैकग्राउंड कैसा कैसा होगा, और भले यहाँ कितनी भी कुंडली बना लो लेकिन फिर भी वो तो थोड़ा तो फर्क रहता ही है। इसलिए बाबा कहते अपना एक ही कौन सा है कि हम एक ही परिवार के हैं, हम एक ही घर से आए हैं, और ये सारा भूल करके हम सभी एक ही घर से आए, एक ही तो परिवार के हैं। अगर वो याद हमको रहता है, आत्मिक स्थिति हमारी रहती है कि जो भी हो गया, लेकिन अभी हम एक ही परिवार के हैं, एक ही घर से आए हैं, और हर एक में कुछ न कुछ विशेषताएँ हैं, कमियाँ भी हैं, तो सब स्वीकार करते हैं तो मतलब कि दे सकते हैं। दूसरा है कि जो बोल होता है वो अलग हो और सोचना अलग हो तो किसी का हमारा वाइब्रेशन ठीक नहीं पहुंचता है। हम बोलते वाणी से तो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, हारमोनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, लेकिन अंदर हारमोनी है ही नहीं। जिस व्यक्ति से हारमोनी की बातें करते हैं वो तो एक दो घंटे के बाद उससे ही मतलब ये हो जाता है। तो बाबा कहते दुआएं कहाँ मिली, असर नहीं होती है। दूसरा है कि हमारे ज्ञान में जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज्ञान आ जाता है, बहुत क्लास कराते हैं तो एक थोड़ा अहंकार आता है। तो बाबा कहते हैं कि जब अहंकार आता है तो क्या होता है, अहंकार आपको बता पांचवी सीढ़ी से गिरने की बात है। तो यहाँ बाबा के बच्चे बनने के बाद बहुत कुछ गुण तो आ जाता है, विशेषताएं आ जाती है, लेकिन उसके साथ साथ अहंकार भी आ जाता है। तो बाबा कहते हैं निरहंकारी निर्माणचित और निस्वार्थी होंगे तब हम दुआएं दे सकते हैं। और दुआएं देने का फायदा क्या है, दुआएं देने का फायदा जब दुआएं देते हैं, दुआएं है ना अंत तक चलती है। तो एक स्टोरी मुझे याद आती है कि एक बार क्या हुआ कि एक डॉक्टर दोषी था, उसका नाम दोषी था, और डॉक्टर मेहता था, तो उन्होंने है ना तो आई स्पेशलिस्ट था, और आई स्पेशलिस्ट था तो 15 साल उसने अपनी जॉब किया। उसके बाद उसको अंदर से हो गया कि मैं समाज की सेवा कर दूँ। तो उसके साथ जो डॉक्टर मेहता था वो कहे हाँ करेंगे, उसमें क्या है। तो उन्होंने 3 लाख जितने फ्री में ऑपरेशन किया मोतिया बिंदु का, सबका करते थे। तो उसका है ना जो ग्रीनिश बुक है ना, उसमें उसका नाम भी आ गया, लेकिन प्रमुख प्रभु स्वामी जो है ना, प्रमुख स्वामी, उन्होंने उसका सत्कार किया था बहुत अच्छी रीति से। तभी बहुत सिंपल था, इसका जो कपड़े है ना उसको प्रेस किया हुआ भी नहीं होता था। तो इतना ऐसे साधारण व्यक्ति का इतना बड़ा सम्मान करता है तो लोगों को बहुत आश्चर्य लगा। और उसके बाद बहुत समय के बाद उसका, उसमें से एक संत था, उसका डॉक्टर मेहता से मतलब कि भेंट हुई, तो उन्होंने बताया कि हमको ये नहीं समझ में आता है, वो इतना साधारण था और प्रभु स्वामी इतना मतलब कि कर दिया, कैसे कर दिया। तो उन्होंने बताया कि वो जो डॉक्टर दोषी था ना, उन्होंने 3 लाख ऑपरेशन किया था और उसको समाज की सेवा करूँ लोगों की। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि इतनी सेवा करनी थी तो पैसा कहाँ से आता था। तो बोला कैंप, पहले तो अपना तो जमा किया होता था, कैंप करते थे तो कैंप की जगह ढूंढते थे, सब कुछ करते थे, शाम को जब 5 बजे आते थे, जब अपने घर में लौट के आते थे 6 बजे, तो इतने चेक होते थे घर में के बाहर लोग हैं ना, जैसे वरंडा होता है लेकिन ताला लगाया होता जाली, तो उसमें इतने सारे चेक होते थे, तो कोई 50 का होता था तो कोई 5000 का होता था, कोई 25 लाख का भी होता था। तो वो जब भी हम प्रवेश करते थे ना, तो मैं डॉक्टर मेहता कहता है कि मैं कहता था कि इतने सारे चेक है देखो, वो देखता नहीं था, बस अपनी कुर्सी पर बैठता था और ये सब काम मैं करता था कि ये सारा खाते, तो मैं उसको बोलता था आज इतना आया इतना, तो भी वो सुनता नहीं था, जरा भी सुनता नहीं था, दूसरे दिन वही मतलब कि काम करने का। तो इतना पैसा आता था और फिर भी हम लोगों का जो काम करते थे उसमें भी हमारी एक लाइन रहती थी, उसमें गरीब पैसा वाला ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उसको हम आगे लेते, ऐसा नहीं था, सबका नंबर आता था और ऑपरेशन करते थे। तो व्यक्ति ने निस्वार्थपने से सेवा की और सबके प्रति एक की भावना रखी और इतना ईमानदार था कि उसको कभी भी पैसे की, तो व्यक्ति को इतनी कीर्ति भी मिली, उसको नाम मान शान भी बहुत मिला। नाम मान शान के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं होती है, जब बाबा के बन जाते हैं और निस्वार्थ मन से काम करते हैं तो ऑटोमेटिक वो चीज आएगी ही आएगी। तो दुआएं देने का एक फायदा है कि जब बहुत दुआएं देते हैं, निस्वार्थ मन से देते हैं, तो हमारी भले चाहना नहीं है लेकिन बाबा सब कुछ पूरा कर देता है। दुआएं जब देते तो पुण्य का खाता हमारा बढ़ जाता है। जहां पहले भी बताया दवाइयां काम नहीं करती है वहां दुआएं कार्य करती है। दूसरा है कि दुआएं जैसे साइलेंस की रॉकेट, बाबा ने बोला फास्ट जाता है, वैसे वो दुआओं का रॉकेट भी बहुत फास्ट है। तो उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है, वैसे व्यक्ति को सारा बदल देती। दुआएं ऐसी होती है जो कैसा भी व्यक्ति आता है ना उसके प्रति इतनी भावना ही होती है, तो दुआएं बदल देती है। तो इसका एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है, दादी शीतू थी, वो 5 नंबर में रहती थी, तो उसके साथ एक इनकी ब्राह्मणी थी, नई नई आई थी, तो एक बार मैं भी वहाँ उसके साथ सोई थी, तो सारी रात वो इधर से उधर उधर से उधर करती थी उसको, ये नहीं तो दादी है ना, तो उठी 2 बजे और उसको बोला कि तुमको नींद नहीं आती है क्या। तो मैंने बोला दादी अभी इतने इतने समय हो गए हैं, आप सो जाओ ना, आप इतनी उम्र है आपकी। तो कह नहीं, वो कब से वो तड़फ रही है। तो उसको उठा के वो बोला मेरे कमर में बहुत दर्द है दादी ने है ना, तो लाइट की और ये बाम ढूंढा और उसको लगा रही थी। मैं बताऊं देखो, ये व्यक्ति को आराम मिल गया तो उसको अंदर से जिंदगी भर वो दादी को बोलेगी। तो ये है छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ऐसा दुआओं का काम करता है और ये दुआएं काम आती हैं। और सीतू दादी का जब भी उनका वहां से आती थी ना तो सारा लेके आती थी, तो दादी के हर पास चप्पल अच्छे नहीं थे। तो मैंने कहा कि दादी आपको इतना सारा पैसा आता है, आप कोई भी स्टूडेंट को कहो तो लेके आएगा। बोला नहीं नहीं नहीं, अमानत में खयानत नहीं, अमानत में खयानत नहीं। तो मैं उसको पकड़ के दादी के पास ले जाती थी, जितना भी आता था ना पोटले में वो साथ दादी के सामने रखती, दादी उसको बहुत प्यार करती थी। मैंने बोला दादी को बोलो नहीं लच्छू दादी चप्पल देगी। बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे चलेगा। तो ये यज्ञ के प्रति कैसे लोग थे, मतलब जिसे यज्ञ चला है। दूसरा है कि मन में किसी के प्रति उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा, जब भी दुआओं देने का हम लक्ष्य रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आएंगे तो हमारे उसका जो भी हुआ हम उसके प्रति ध्यान नहीं देंगे। दुआएं देते हैं, दुआएं जब देते हैं तो दुआएं देते हैं तो लेने मतलब दुआएं लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कि देते हैं तो देने में लेना समाया हुआ होता है, मन हल्का रहता है और मन संतुष्ट भी रहता है कि आज हमने ये निस्वार्थपने से सेवा की तो कितना संतुष्ट रहता है। लोगों के साथ हमारा संबंध संपर्क मीठा रहता है, स्नेहपूर्ण रहता है, तो ये सारा फायदा है। लेकिन कौन नहीं दे सकता है दुआएं, कौन नहीं दे सकता होगा। नहीं, दुआएं तो सबके पास है, देना नहीं चाहता है। जो जिसके पास निर्माण और निर्माणता का बैलेंस नहीं होता, आप देखो कितने सारे सेंटर्स खुल जाते हैं, अभी रिट्रीट हाउस खोलते हैं तो सेवा में बहुत आगे हैं, इतने आगे हैं तो सारा निर्माण काम उसमें बहुत आगे हैं, लेकिन वो निर्माण काम करते करते निर्माण होना भूल जाते हैं। तो सेवा की उन्नति बहुत होती है लेकिन निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ मैपन आ जाता है, थोड़ा अहंकार आ जाता है, किसी को मान किसी को अपमान, तो ये सब कुछ में फंस जाते हैं, तो मतलब सब मिक्स हो जाता है। तो हमको जो चाहिए ना, स्टूडेंट की जो दुआएं चाहिए वो सब हमको नहीं मिलती है, क्योंकि सभी जो स्टूडेंट होते हैं ना उनको मालूम पड़ता है, तो वो लोग बाहर से भले, क्योंकि उनको रोज आना है, फिर चिट्ठियां लेनी है, यहाँ सेवा के लिए आना है, तो वाह वाह तो करेंगे, लेकिन अंदर से जो देना चाहिए दुआएं वो नहीं मिलती है। निर्माणता नहीं है तो सभी संबंध संपर्क वाले जो होते हैं वो भी दिल से उनको दुआएं नहीं देते हैं। फिर हम इतने समय से चलते हैं तो आपको बाबा ने कहा था कि हम जब चलते हैं तो कोई ना कोई हमारे एक तो पीछे होता ही है, नहीं होता है, होता ही नहीं होता है, अनुभव तो सभी को है। एक ऐसा होता है जो पीछे पड़ा ही रहता है और उनके प्रति हमारी भावना रखना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि रोज रोज हमको दस बार हम उसका अनुभव हो और हम रात को बैठ करके उसको दुआएं दें, हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो घड़ी घड़ी हमको ठोकर, किसी को एक बार लगता है ना, थोड़ा सा बहुत लगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा लगता है तो घाव पड़ जाता है, वैसा मतलब कि जब भी बहुत बार होता है तो ऐसा लगता है कि सबको दुआएं दो, विश्व के ग्लोब पर बैठ करके सारे विश्व को दो, लेकिन उसके प्रति हमारी इतनी ये नहीं होती है। तकलीफ देता है ना तभी। कोई बद्दुआ देता है तो क्या करना चाहिए, जो हमारे अगेंस्ट होता है ना उसको पहले सुबह में अमृत वेले उठ के उसको थोड़ा योग का दान दे दो, उसको एडजस्ट करने का सोचो कि भाई ऐसा ये करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए एडजस्ट करने का। और बाबा कहते हैं कि आपने तो विश्व को परिवर्तन करने का, स्व को परिवर्तन करने का और प्रकृति को परिवर्तन करने का चैलेंज किया है, तो जब चैलेंज किया है इतना सारा बदलने का तो क्या आप इस व्यक्ति को नहीं बदल सकते हो? दूसरा है कि हम हमेशा कोई बहुत बार तकलीफें होती हैं तो हम किसी को हम वर्णन करते उसको नहीं करते, उससे नहीं कहते, उससे तो अच्छा बोलते हैं लेकिन दूसरे को कहते ये ऐसा करता है सारे दिन मेरे को ऐसा करता है वैसा करता है, वो तो हो ही जाता है, नहीं होता है क्या? तकलीफ होती है तो ना, तो ये तो बदलने वाला ही नहीं है, बस ये सुधरेगा ही नहीं। बाबा कहते थे स्टैंप लगा देते हैं, अब स्टैंप लगाने का तो हमारा काम नहीं, लेकिन हमको बहुत दर्द दिया है तो हम मतलब कि उसको नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों को कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब भी हम लोगों को कोर्स कराते हैं ना, तो लोगों को कोर्स कराते हैं तो हम क्या करते हैं, जब नया कोई आता है ना तो उसको ऐसा लगता है देवी है, उसमें सर्वगुण संपन्न है, उसमें कोई कमियां है ही नहीं, ऐसा लगेगा शुरुआत में। तो मतलब कि 7 दिन का जब कोर्स करते हैं तो वो हमारे इतने भगत बन जाते हैं, लास्ट तक भगत ही रहते हैं, क्योंकि जब भी आते हैं हम उसके प्रति अच्छा भाव रखते हैं, उसको टोली देते हैं, उसको स्नेह से बुलाते हैं, ये सब हमारा होता है, तो हम उनके लिए हम देवी है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो नेगेटिव है है ना, उसको उसको जो कोर्स कराना है तो सबसे पहले अपने को कराओ कि नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनना है। तो अगर हमारा कोर्स भी चालू रहेगा ना, तो हम धीरे धीरे हमारे में नेगेटिव जो जो बातें होती है पॉजिटिव होती जाएगी। फिर बाबा ने कहा है कि छोटा मोटा एक दाग होता है दिल में, किसी के प्रति न किसी के प्रति होता ही है, किसी के प्रति बड़ा दाग होता है, किसी के प्रति छोटा होता है, लेकिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाबा कहते इतने जन्मों का संस्कार में हम दबे हुए हैं, इसलिए तो होता है। लेकिन हमको करना क्या है? ज्ञान मिला है तो दाग तो नहीं रखना चाहिए ना। तो दिल में कोई बड़ा छोटा दाग नहीं रखो, बिल्कुल साफ दिल रखो। और कोई भी किसी की छोटी मोटी कोई ने इंसल्ट भी कर दिया तो उसको डोंट केयर कर दो, कोई बात नहीं। उसके लिए क्या करने का? ड्रामा को याद रखो। ड्रामा को कैसे याद रखेंगे? कि ड्रामा तो कैसा है, फिक्स है, उसमें हर एक आत्मा में जो कैसेट में भरा हुआ है ना, बदल सकता ही नहीं है। उसमें जो कैसेट है ना, वो भरी हुई है, वो तो रिपीट होंगी ही होंगी ना। तो उसको हम क्या करेंगे? ड्रामा में सभी का पार्ट एकदम फिक्स है, इसकी कैसेट भी फिक्स है, इसलिए हमको उसको सुधारने की, उसको कुछ भी एडवाइस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें उनसे क्या करना है, उसके थोड़ा सावधानी से चलना है। तो ड्रामा को याद रखो, ये तो कल्याणकारी है। दूसरा है कि इतने जन्मों में मैंने प्लस माइनस किया है, हो सकता है हमारा इससे बहुत ही माइनस हो रहा हो। बहुत जन्मों के अंत में बाबा ने एक बार बहुत हंसी की बात बताई थी कि कोई पत्नी बहुत मार खाती है, तो बाबा ने कहा कि उस अगले जन्म में जरूर उसने मार दिया होगा उसको कुछ न कुछ। तो बाबा हंसी हंसी में हमको बता भी देता है। तो मतलब कि हमारा इतना जन्मों का हिसाब किताब प्लस और माइनस हर एक व्यक्ति हमारे सामने आएगा। तो जब ये प्लस आते हैं तो हमको बहुत सुख मिलता है, तो हम समझते हैं व्यक्ति हमको बहुत सुख दे रहा है। और कोई माइनस आता है तो हमें दुख देता है, तो हमको लगता है व्यक्ति अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छा है या बुरा है वो तो हमारे कर्मों पर निर्भर रहता था, क्योंकि हमने जो कर्म करके आए हमें भूल गए हैं। इसलिए हमें अगर समझते हैं कि हमारा ये सेटल होने का टाइम है, इसलिए हमें अपना अकाउंट कैसे सेटल करना है। दूसरा है कि स्वपुरुषार्थ के साथ साथ हमें और क्या चाहिए? बाबा कहते हैं स्वपुरुषार्थ बहुत करते हैं, किसी की दुआई नहीं मिलती है। तुमको छोटे की दुआएं भी चाहिए, बड़ों की दुआएं भी चाहिए, और बाप दादा की दुआएं भी चाहिए। अब छोटों की दुआएं तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि छोटों को तो डांटते रहते हैं, कुछ भी गलती आई तुरंत उसको बताएंगे तुमने ऐसा किया तुमने ऐसा किया। लेकिन उसको अगर मान सम्मान की दृष्टि से उसको प्यार से सिखाते हैं तो व्यक्ति को अंदर से अच्छा लगता है, है ना। अगर कोई भी गलती करते हैं और बताते हैं तो उसको डांट पड़ती है, तो गलतियां छिपाते रहते हैं। लेकिन अगर उसके प्रति बहुत प्यार से भावना रखते हैं, तो एक बार है ना, तो वो जो मुजफ्फरनगर की रानी बहन है ना, उसने एक एग्जाम्पल सुनाया था कि हमारे सेंटर पर बड़ी छोटी बहनें होती है, तो जब नई नई एक बहन आई है तो हम जब सामान देते हैं इसको, तो सामान तो सीनियर है उसको और जूनियर है उसको, सबको देते हैं। तो हमारा एक हिसाब है कि जो भी आए उसको एक साथ ही एक जैसा ही देना है, तो उसको संकल्प ही ना चले। तो कहीं पर सीनियर बहनें होती है, बोला हम इतने सालों से हमको अच्छा साबुन मिलना चाहिए, अच्छा वो मिलना चाहिए। तो हम कहते हैं कि देखो सबको एक समान ही देंगे तो किसी का संकल्प नहीं चलता है। तो बड़ों को ऐसा संकल्प चलता, लेकिन छोटी छोटी होती खुश हो जाती कि देखो बड़े को मिला वही हमको मिला। तो एक बार उन्होंने क्लास कराया कि देखो हम ऐसा करते हैं, तो धीरे धीरे सबको समझ में आ जाता है कि हमें भी जो भी हमारे साथ बहनें आई है, नई है पुरानी है, सबको अगर एक समान हम व्यवहार करेंगे तो आज नहीं तो कल उनको मन में हमारे प्रति भावना ही रहेगी। तो सबके साथ हमारा ऐसा होना चाहिए। तो दुआएं ऐसे मिलती हैं, और जब छोटी मोटी चीज होती है तो उसको हम सुने बराबर कि भाई उसको क्या क्या हुआ है। तो सुनने के बाद अगर उसको समझाते हैं तो दुआएं मिलती हैं। और बाप दादा की दुआएं कैसे मिलती है? बाप दादा की दुआएं मिलने का एक बहुत बड़ा कारण है कि श्रीमत बाबा की जो भी श्रीमत तो बहुत सारी होती पूरी बुक भर के, लेकिन मुरली में जो रोज की श्रीमत आती, रोज की बाबा की जो श्रीमत आती है उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो बाबा की दुआएं मिलेगी। दूसरा है कि बाप दादा हमारा है तो हम जैसे कोई व्यक्ति के प्रति खूब प्यार होता है तो हम उसको ईमानदार भी रहते हैं, वफादार भी रहते हैं, है ना। वैसे यहां भी यहाँ भी बाप दादा हमारा है, सब संबंध हमारा उनके साथ है, तो हमारा वफादारी उसके साथ होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, और ईमानदारी होंगी, वफादारी होंगी और हमारे में निवित्तपन की भावना होंगी तो बाप दादा से दुआएं ले सकते हैं। बाबा ने हमको ट्रस्टी बनाया है, ट्रस्टी बनाया है तो हमको सामान मिलता है, सब प्रकार का सामान मिलता है, तो कोई कोई ज़्यादा लिख दे, कोई कोई कम लिख दे, तो भी वो हिसाब तो बनता है। बाबा ने एक बार बताया था कि मैं है ना, अगर आप अच्छा अच्छा काम करोगे तो मैं पद्म गुणा दूंगा, लेकिन अगर आपने कुछ भी किया तो मैं कण कण का हिसाब लूंगा, हर कर्म का हिसाब लूंगा। तो बाबा बैठा है तो हिसाब तो वो लेगा, तो इसलिए तो ईमानदार रहना है, वफादार रहना है, और हमारी भावना निस्वार्थ होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा कि मैं विश्व कल्याणकारी और मेरे बच्चे भी क्या है, हमारे विश्व कल्याणकारी है, तो कल्याणकारी के लिए रहमदिल होना चाहिए। तो बाबा के यज्ञ प्रति इतना वफादार और इतना ईमानदार रहना चाहिए, यज्ञ की कोई भी चीज़ें होती है उसके प्रति हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कमरे में जब हम देखते हैं ना ये सेवाधारी, तो ऐसे ही लाइट छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या है बाथरूम में वहाँ पानी जो होता है, लाइट होता है, वो हमारा समझ हमारे घर में ऐसे छोड़ के आते हैं क्या, कितना ध्यान रखते हैं बिजली का पानी का। और यहाँ बाबा के घर में पानी का नल भी खुला रहता है, तो यज्ञ के प्रति हमारी भावना होनी चाहिए कि हमारा ही है। अभी कौन दुआएं नहीं दे सकते हैं, सबसे पहले जिस जो व्यक्ति है ना पर चिंतन और पर दर्शन में सारा दिन बिजी रहता है, ये क्या करता है ये नहीं, क्या कर नहीं करता है। दूसरा है कि उसका जीवन में स्वमान है ही नहीं, स्वमान में स्थित नहीं रहता है, स्वमान में स्थित नहीं रहता है। और दूसरा है अंदर एक, दूसरा बाहर एक, मतलब अंदर बाहर साफ नहीं है, अंदर से जो होना चाहिए वो बाहर भी होना चाहिए वो नहीं। और दूसरा है कि सारे दिन बुद्धि व्यर्थ में भटकती रहती है, यहाँ जाना है, यहाँ प्लान बनाना है, सब में बुद्धि भटकती है। दूसरा है कि साधनों और वैभवों में और पदार्थों में, साधन सांझ के साधन है उसमें हमारी बुद्धि बहुत जाती है, और वैभव वैभव माना अच्छा कपड़ा पहनना, इसने अच्छा पहना है मैं भी अच्छा पहनूं, तो हम कंपैरिजन करते हैं सारे दिन कि उसका बहुत अच्छा है जैकेट है, इसका अच्छा बहुत है, मैं ऐसा ही सिलाई कराऊंगा टेलरिंग में जाके, तो ये बुद्धि हमारी भटक गई। तो साधनों और वैभवों में और पदार्थों में हमारी बुद्धि अगर जाती है तो बाबा के पास कितना टाइम रहती होगी। दूसरा है कि कोई भी प्रकार का नाम मान शान की इच्छा हो जाती है कि भाई देखो ये तो बहुत आगे बढ़ गया नाम मान शान, तो हम क्या करते हैं बड़े बड़े के आगे घूमते हैं, जहां हमको मिलता है कि यहां से नाम मान शान मिलेगा वहां हम जाते हैं, तो हमारी बुद्धि भटकती रहती है। दूसरा है कि हमको है ना कोई कुछ भी बोलता है तो हमको फीलिंग आ जाती है, फीलिंग का फ्लू, फ्लू की बाबा ने एक बार क्या फीलिंग देवी हाँ ऐसी एक क्लास कराया था, तो वो तो होती है हमको भी कभी कभी आ जाती, कोई किस्त बोलता है तो होता है ऐसा।
आपको तो शुद्ध फीलिंग आती,
शुद्ध फीलिंग आनी चाहिए, लेकिन कभी कभी अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो अभी बाबा कहता है कि बाबा ने कहा कि मैं आशीर्वाद नहीं देता हूँ किसी को, सब अपना अपना काम करेंगे उसको मिलेगा, तो आशीर्वाद देने का काम नहीं करते हैं।
देव भी देते हैं।
हाँ
ब्राह्मण जन्म से लंबे आयु दे
देता है। हाँ हाँ देवियां देती है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि मैं सतयुग में मतलब संगम युग में जितना जितना आपने किया है उसका मैं आपको उसका रिटर्न है ना भक्ति मार्ग में मतलब कि द्वापर युग में भी भक्तों को देता हूँ, क्योंकि आपकी आपने आराधना जो की उसने तो आपने तो अपना प्रारब्ध बना दिया, 21 जन्म सुख प्राप्त कर लिया, लेकिन उनके लिए स्वर्ग कहाँ है बिचारे के लिए, इसलिए आपके द्वारा उसको सब इच्छाएं पूरी करने का एक वरदान देता हूँ। तो आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद में क्या होता है, दुआएं में क्या होता है, आशीर्वाद जो देते हैं ना उसमें एक बड़ा होता है और छोटे को आशीर्वाद देता है ना, छोटा कभी बड़े को आशीर्वाद नहीं दे सकता है, शिष्य गुरु को नहीं देता है ना, टीचर देता है आशीर्वाद लेकिन पढ़ाई भी पढ़नी पड़ती है, तो बड़े बड़े साधु संन्यासी होते हैं ना छोटे छोटे शिष्यों को आशीर्वाद देता है, लेकिन दुआएं छोटा बड़ा कोई भी कहाँ भी बैठा हो कोई कितना भी बड़ा हो छोटा बच्चा भी अगर चाहे दुआएं तो वो देने का काम कर सकता, सकास देने का काम कर सकता है, दूसरा है कि ये दुआएं है ना लेने देने का सूक्ष्म काम है, और आशीर्वाद तो है ना सन्यासी होते हैं वो हाथ रखते हैं, हाथ मतलब कि ऐसे रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दूसरा है कि जब समय पर सहयोग देते हैं ना किसी को तो भी दुआएं मिलती है, समय पर सहयोग। अगर उसको बहुत जरूरत है, दवाई की जरूरत है और उसको पेट में बहुत दर्द है, सर बहुत दर्द करता है, वो सो नहीं सकता है, उसी समय अगर वो कोई उसको दवाई दे देता है ना तो उसको अंदर से ऐसा लगता है कि अरे रे मेरा ये काम पूरा हो गया। तो सारे दिन में बाबा ने कहा कि दुआओं देने का काम है ना, जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, संबंध संपर्क में उसको मतलब कि आप जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उसको दुआएं दो और दुआएं लो। वो काम जब करेंगे तो आप देखो बाबा कहते सब जितने भी है उसमें आ जाएगा। कोई भी आपके पास संपर्क संबंध में आया है उसको, उसको प्रति आपकी भावना पहले से अच्छी रखो तो संबंध संपर्क में आते हैं उसको दुआएं दो और दुआएं लो। ये बाबा ने कहा कि बहुत इजी काम है। ओम शांति।